बाबुल, जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर में चली, यादों के लेकर साए, चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। खिलौनों बताशों से अपनी माँ के सोने आंचल को भरते हुए अहाना ने अपने घर की दहलीज पार की। अपने घर आंगन को सुख समृद्धि और धन दौलत से भरने की प्रार्थना करते हुए उसने पलटकर एक नज़र अपने घर को देखा, जहाँ उसका बचपन बीता था। बचपन से जवानी तक की अनेकों यादें उसकी आंखों में आंसू बनकर उमड़ आईं। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद औरतों की रुलाई फूट गई। ऐसे बिलक बिलक कर रो पड़ी थी वो। पल्लवी ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, पर खुद को रोने से नहीं रोक सकी। आखिर आज उसकी बचपन की सखी उससे जुदा हो रही थी। दिल भर आया था उसका, और रोकते रोकते भी आंखें छलक उठी थीं। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियां। अहाना जयेश जी के सीने से लगी फफक पड़ी। उन्होंने भी अपनी बिटिया को कलेजे से लगा लिया, आंखें उनकी भी छलक आई थीं। आखिर बेटी की विदाई में दिल फटने लगा था। आसान तो नहीं था अपनी लाडली को यूं ही किसी और को सौंपकर खुद से दूर भेज देना। पत्थर दिल नहीं थे वे, और माता सीता की विदाई पर तो परम ज्ञानी पंडित महात्मा धैर्यवान जनक जी भी खुद को रोक नहीं सके थे। फिर यहाँ तो एक आम सा पिता था जो अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर भेज रहा था। जयंती जी भी आंचल में मुँह छुपाए रो पड़ी थीं और अपनी बिटिया को अपने सीने से लगा लिया था। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। महिलाएं पीछे सुबकते हुए गीत गा रही थीं। अहाना को बारी बारी सब बड़ों ने अपने सीने से लगाकर उसे नए जीवन के लिए ढेरों आशीर्वाद दिए। पल्लवी और अहाना दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगीं तो आंसू हर बांध तोड़कर बह निकले। दृशांत ने उसके सर पर हाथ फेरा तो अहाना उससे लिपटकर रो पड़ी। दृशांत की भी आंखें भीग गईं और दिल अनेकों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार वो अहाना से करता था। दोनों की साथ में घेरों अच्छी बुरी यादें थीं, और अब उसकी वही लाडली बहन उसे छोड़कर जा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं सका। जी जी, दो रुंधी हुई आवाज अहाना के कानों से टकराई। तब जाकर वो दृशांत से अलग हुई। अंतरा और निशांत दोनों आंखों में ढेरों आंसू कैद किए नम आंखों से सुबकते हुए उसे देख रहे थे। अहाना ने लबों पर आंसुओं से भरी मुस्कान सजाते हुए अपनी बाहों को फैला दिया और दोनों उसके सीने से लग गए। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना, ये बाबुल की गली सजन घर में चली। किसी तरह रोती बिलकती अहाना को दुल्हन सी सजी गाड़ी में बिठाया गया। बाकी बाराती होटल से निकल गए थे। यहां बस चंद ही लोग थे और अब वे भी निकलने की तैयारी में थे। सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता अक्षय जब पल्लवी के पास पहुंचा तो उसने भावुक स्वर में कहा, मुझे आपसे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। आपसे बस एक अनुरोध है, हमारी अनु का ध्यान रखिएगा। अंतर्मुखी है वो, जल्दी से अपने दिल की बात शब्दों में जाहिर नहीं करती। किसी की बात बुरी लगे तब भी खामोशी से सह जाती है। अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराती है ताकि उससे जुड़े लोग खुश रहें। तो उसकी खामोशियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके भरोसे उसे खुद से दूर कर रहे हैं, उसका ख्याल रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका न मिले। अक्षय ने दृशांत के पैर छूने चाहे तो उसने पहले ही उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। उसके अधर मौन थे, पर उसकी आंसुओं से भीगी बेचैन निगाहें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। आखिर वो भी एक बहन का भाई था, अपनी बहन को विदा उसने भी किया था। फिर दृशांत के दिल के हाल को कैसे न समझता। उसने दृशांत के हाथ को पकड़कर नीचे कर दिया और संजीदगी से बोला, भैया आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप बड़े हैं मुझसे, यूं मेरे आगे आपका हाथ जोड़ना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको अपनी बहन की चिंता है, पर आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपकी बहन को संभाल कर रखूंगा। मेरी भी बहन है और समझता हूं आपकी चिंता, पर विश्वास कीजिए मेरा, मैं अहाना को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दृशांत उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसे गले से लगा दिया। अक्षय ने अंतरा और निशांत के साथ हाथ मिलाया। बाकी सबने भी विदा ली और गाड़ियों में बैठ गईं। अच्छा चलते हैं भाई साहब, अभिजीत ही ने जाने की इजाजत मांगी। अगले ही पल जयेश जी ने उनके आगे सर झुकाते हुए हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करते हैं, अगर हमारी ओर से कोई कमी या शिकायत हो तो उसकी सजा हमारी बिटिया को मत दीजिएगा। बहुत मासूम है हमारी बिटिया, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे आगे हाथ जोड़कर आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। सर तो हमें आपके आगे झुकाना चाहिए, हम कृतज्ञ हैं आपके कि आपने अपनी बेटी हमें सौंपकर हमें धन्य कर दिया। अहाना आज से हमारी बहू नहीं, बेटी है, हमारे लिए फलक और उनमें कोई अंतर नहीं। अभिजीत जी ने तुरंत ही उनके हाथ को पकड़कर नीचे किया। उनकी बात सुनकर जयेश जी भावुक भी हो चुके पर कुछ कह ना सके। अभिजीत जी ने उन्हें गले से लगाया और दुल्हन संगीने चुने बाराती भी शुक्ला निवास से विदा हो गए। दृशांत निशांत ने कुछ दूर तक अहाना वाली गाड़ी को धक्का भी दिया था और खिड़की से सर निकालकर बैठी अहाना पीछे छूटते अपने घर आंगन गली मोहल्ले और परिवार को देखकर मौन आंसू बहाती रही। कार कुछ दूर निकल आई थी, अन्वय ड्राइविंग कर रहा था, फलक उसके साथ बैठी थी और अहाना के साथ अक्षय पीछे की सीट पर बैठा था। नाक के नीचे तक घूंघट निकाले और उसके ऊपर चुनरी से चेहरा ढके अहाना अब भी सिसक रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अक्षय के दिल को बेचैन कर रहे थे। जी चाह रहा था कि उसकी आंखों से आंसू का एक एक कतरा चुरा ले, उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा ले, पर अन्वय और फलक की उपस्थिति के कारण हिचकिचा रहा था। अजीब दुविधा में फंसा था वो। अहाना को रोता हुआ उसे देखा नहीं जा रहा था और चुप करवाने की पहल वो कर नहीं पा रहा था कि कहीं बाद में अन्वय और कलक मिलकर इस बात का फायदा उठाकर उसकी टांग न खींचने लगे। भाई बैठे बैठे मूर्ति बने ताक क्या रहे हैं, चुप करवाइए ना भाभी को, आपकी वजह से रो रही है। इतनी देर से खामोश बैठे अन्वय से जब और बर्दाश्त न हुआ तो आखिर में उसने अक्षय को टोक दिया। अक्षय जो परेशान सा अहाना को देख रहा था उसने चौंकते हुए सिर सामने की ओर घुमाया और फ्रंट मिरर में अन्वय को देखते हुए हैरानगी से बोला, व्हाट, मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपकी ही वजह से रो रही है भाभी, अन्वय ने तुनकते हुए दबाक से जवाब दिया। सारा ब्लेम खुद पर लगते देखकर अक्षय अचंभित सा उसे देखता ही रह गया। मेरी वजह से कैसे? मन में तूफान मचाता सवाल होठों पर आकर ठहरा था। अन्वय ने अफसर घुमाकर पीछे बैठे अक्षय को देखा और गंभीर स्वर में बोला, आपसे उनकी शादी हुई और उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए तो रो रही हैं, तो आप ही हुए ना उनके आंसुओं की वजह, अब चुप करवाइए उन्हें। छोटे भाई से फटकार लगी तो अक्षय सकपका गया, झेमते हुए सर हिलाता, आखिर बात तो ठीक थी उसकी। कुछ पल दिमाग के घोड़े दौड़ाए पर जब अहाना को चुप करवाने का कोई तरीका समझ न आया तो पॉकेट से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कोमल स्वर में बोला, अहाना लीजिए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। वाह जी वाह भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, आज तक किसी दुल्हे ने अपनी नई नवीली दुल्हन को ऐसे चुप न करवाया होगा, इस महान काम के लिए तो आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। एक बार फिर अन्वय ने उस पर तंज कसा और उसके ताने सुनकर अक्षय का मुंह बिगड़ा, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता फलक ने पानी की बोतल अक्षय की ओर बढ़ा दिया और नर्म लहजे में बोली, लीजिए भैया, भागी को पानी पिलाइए, थोड़ा शांत हो जाएंगी, और जरा प्यार से उन्हें चुप करवाइए, आपके भरोसे वो अपना घर परिवार सहेली सब छोड़कर आई है, अगर आप उन्हें नहीं संभालेंगे तो और किसका सहारा होगा उन्हें। अन्वय के उलट फलक ने बड़े ही नरमी और गंभीरता से अक्षय को समझाया था। उसकी बात समझते हुए अक्षय ने सर हिला दिया, अहाना चुप हो जाइए, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो आपको वापस यहीं आना है, खुद को संभालिए, अगर इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, चलिए आंसू पूछिए और पानी पी लीजिए।
अहाना ने इस बार सकुचाते हुए उसके हाथ से रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछ लिए। सिसकते सिसकते हिचकी भी आने लगी थी, सो पानी की बोतल भी थाम ली, पर पानी पीने के बजाय कश्मकश में उलझी परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। सर पर घूंघट था, ऐसे में पानी कैसे पिए समझ ही नहीं आया, और नए नए जुड़े इस रिश्ते में हिचक व शर्म के कारण अक्षय से कुछ कह भी नहीं सकी। पर उसे यूं बोतल पकड़े बैठे देखकर अक्षय उसकी उलझन समझ चुका था। उसने बड़ी ही नर्म लहजे में कहा, अहाना ये चुनरी और घूंघट हटा दीजिए, सफोकेशन हो रही होगी, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और पानी पी लीजिए। हाँ भाभी, बस हम लोग ही तो हैं, हटा दीजिए घूंघट, फलक ने भी जब जोर दिया तो अहाना ने हिचकिचाते हुए चुनरी और आंचल को सरकाकर सर पर रख लिया और चेहरा फेर कर एक दो घूंट पानी पीने के बाद बोतल अक्षय की ओर बढ़ा दी। थैंक यू, अब आप इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे थैंक यू कहेंगी, अक्षय ने नाराजगी से पर धीमे स्वर में कहा, पर आवाज़ सामने बैठे चंगू मंगू की जोड़ी तक भी पहुँच चुकी थी। दोनों ने निगाहें घुमाकर एक दूसरे को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे, जबकि आहाना ने नज़र उठाकर अक्षय को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। शर्म से खुद में ही सिमट गई और खिड़की की ओर चेहरा किए पीछे छूटते अपने शहर को भीगी पलकों से देखने लगी। लंच का वक्त हो गया था तो अभिजीत जी के फ़ोन करने पर रास्ते में पड़ने वाले ढाबे पर अन्वय ने गाड़ी रोकी, जहां बाकी सब भी ठहरे थे कि खा पीकर कुछ सुस्ताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अक्षय दुल्हा था और आहाना दुल्हन, दोनों की ही गाड़ी से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई थी और लगाने वाली थी रूपाली जी, जो खुद तो यहाँ नहीं थी पर उनके सख्त आवेश थे कि दुल्हा दुल्हन सीधे घर आने चाहिए, वरना उन्हें बुरी नज़र लग सकती है। बस आदेश का पालन किया जा रहा था। अक्षय और आहाना को छोड़कर अन्वय और फलक गाड़ी से बाहर निकल गए। अन्वय घूमकर आहाना के पास आया और मुस्कुराते हुए सवाल किया, भाभी आप क्या लेंगी? अन्वय के सवाल पर आहाना ने पलके झुकाए सकुचाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। ऐसा जुल्म ना कीजिए भाभी, आपकी बहन ने खास धमकी देकर भेजा है कि उसके जीजी का ध्यान रखना है। अगर उस लेडी गब्बर सिंह को पता चल गया कि मैंने उसकी जीजी को सारे रास्ते भूखा प्यासा रखा तो मेरी तो जान ही ले लेगी। अपने इस इकलौते देवर पर थोड़ा तो तरस खाइए, क्यों भरी जवानी में मुझे अपनी बहन के हाथों कत्ल करवाना चाहती है? अन्वय ने नाटकीय अंदाज अपनाया। उसकी बातें सुनकर आहाना पलके उठाए, आंखों की पुतलियां फैलाए हैरान परेशान से उसे देखने लगी। इतने में फलक भी वहां चली आई और अन्वय को धकेलते हुए सौम्य स्वर में बोली, भाभी हिचकिचाइए और शर्माइए नहीं, और इसकी नौटंकी पर भी ध्यान मत दीजिए। आप मुझे बताइए आप क्या लेंगी, मैं ला देती हूँ आपको। चाय ला दीजिए, आहाना ने सकुचाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर अन्वय और फलक समेत अक्षय भी चौंक गया। लंच का टाइम है भाभी, आप बस चाय लेंगी? फलक ने हैरानगी से सवाल किया, जिस पर आहाना ने धीरे से सहमति में सर हिला दिया। कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, अजीब अजीब सा लग रहा है। आहाना आपने सुबह से कुछ खाया है? अक्षय का अचानक किया सवाल सुनकर आहाना ने चौंकते हुए सर घुमाकर उसे देखा। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जवाब दीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया है? हाँ, वो सेब के दो चार टुकड़े खाए थे, आहाना ने पलकें झुकाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर अक्षय के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। आपने सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और आप खाली पेट चाय पीना चाहती हैं? अक्षय की सख्ती महसूस करते हुए आहाना की आंखें झिलमिला उठीं। हमारा कुछ खाने का मन नहीं है, बस चाय ही लेंगे, उससे मन ठीक हो जाता है। आहाना की आवाज़ में भारीपन महसूस करते हुए अन्वय तपाक से उनके बीच कूद पड़ा। भाभी चलिए, आपका प्यारा देवर आपके लिए अभी मस्त चाय लेकर आता है, जिससे पीकर आप एकदम तरोताज़ा महसूस करने लगेंगी। भाई आप क्या लेंगे, आप भी बता दीजिए? अन्वय ने मुस्कुराते हुए निगाहें अक्षय की ओर घुमाई। कुछ नहीं, अक्षय ने सपाट लहजे में इनकार कर दिया और निगाहें अब भी आहाना पर टिकी थीं, जो नजरें झुकाए सकुचाई हुई सी बैठी थीं। भैया सच में आप कुछ नहीं लेंगे? अब की बार सवाल फलक ने किया था, पर जवाब अब भी वही आया था। नहीं, मन नहीं है मेरा, तुम लोग कुछ खा लेना और देखना कि सुमित और पापा भी खा लें, बाकी सबको भी कोई परेशानी ना हो। दोनों ने सहमति में सर हिलाया और वहां से चले गए। कार में बस अक्षय और आहाना ही बचे थे और उनके दरमियान अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कमिंग सून, कुछ हाँसुओं और कुछ शरारत में घुला ये पाठ कैसा लगा आपको?